आगे चलेंगे सच्चाई पे। किस इंसान की खूबसूरती उसके सच्चे होने में है। लिखिए, सवाल है सच्चाई क्या है। पहला जवाब, सच्चाई दिल का इत्मीनान है। सच्चाई दिल का इत्मीनान है। दलील होगी इसकी कोई? बिल्कुल है। तिर्मिजी 2518 और हाकिम 13 पार्ट 2 है। हसन बिन अली से ये रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो चीज़ छोड़ दो जो तुम्हें शक में डाल दे और उसको इख्तियार करो जो शक में ना डाले। यकीनन सिद्क इत्मीनान है दिल में और कज़्ब या किज़्ब झूठ इज़्तिराब है। क्या पता चला कि सच्चा शख्स मुतमईन होता है। दूसरा सवाल लिखिए, सच्चाई क्या करती है? जवाब, सच नेकी की तरफ बुलाता है। दलील बुखारी 6094 अब्दुल्ला बिन मसूद से, आपने फरमाया, बेशक सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और एक शख्स सच बोलता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक का लकब और मर्तबा पा जाता है। और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नुम की तरफ। और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। क्या पता चला? ट्रुथफुलनेस सच नेकियों की तरफ ले आता है। आपको वो हदीस याद है, नबी सल्लम के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि शराब भी पीता हूँ, जिना भी करता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, क्या छोड़ूँ? पहले हम होते तो क्या छुड़ाते, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, आपने कहा झूठ छोड़ दो। कहा ये तो बड़ा आसान है। झूठ छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? अगले दिन आया, सुनाओ भाई क्या हाल है। कहा ठीक है, अच्छा जी क्या किया? कल जिना किया था? ये तो किया था। शर्म बड़ी आई, सबके बीच में झूठ कैसे बोलो, झूठ नहीं बोलना। इतना खुद को मलामत किया, कहा आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे फिर अल्लाह के नबी के पास आए, सुनाओ भाई क्या हाल है झूठ का? नहीं, अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोला। ये बताओ कि शराब पी थी कल? ये तो पी थी। ओहो, सबके बीच में सबको पता लग गया मैंने शराब पी। कितनी एम्बेरसमेंट होती है जब हमारी कोई बात दूसरों के सामने आए। हालांकि क़यामत के दिन आ सकती है, अल्लाह आपको मुझे बचाए। बस कहा उसके बाद, आज के बाद तो शराब को भी नहीं पीऊँगा। एक झूठ आपको 100 बुराइयों से रोकता है। बच्चों को ये चीज़ सिखाने की है। झूठ पे करेंगे बात कल हम थोड़ी सी, तो फिर इंशाल्लाह आपको उसके नेगेटिव पॉइंट भी दूंगी, लेकिन यहाँ सच पे फोकस कीजिए। सच्चा कौन है? सवाल पैदा होता है, सच्चा कौन है? तो सूरत बकरा 177, जिसको आप कह सकते हैं कि आयत बिर, उसमें जो नेकी की अकसाम थी उसमें से एक किस्म क्या थी, याद कीजिए, वो लोग जो सच बोलते हैं। लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल मशरिकि वल मग़रिबी वलाकिन्नल बिर्र मन आमना बिल्लाहि। तवील लिस्ट है जिसमें फरमाया कि वो जो अल्लाह पर ईमान लाए, आखरत के दिन पर ईमान लाए और सारी चीज़ों में करते करते, ये वो लोग हैं, उलाइकल्लज़ीना सदकु, ये वो लोग हैं जिन्होंने सच कहा और यही डरने वाले लोग हैं। क्या कुरान पाक में कुछ सच्चे लोगों का तज़किरा है? किसी को सच्चा कहा गया? बिल्कुल कहा गया। सबसे पहले सच्ची माँ, सूरत मायदा 75, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा। क्या फरमाया? व उम्मुहु सिद्दीक़ा, उसकी माँ सच्ची औरत थी। इंशाल्लाह प्लान में है कि हम एक सेमिनार करेंगे, उम्मुहु सिद्दीक़ा और कान अबूहुमा सालिहन, यानी जब माँ सच्ची हो जाए और बाप साले हो जाए तो नस्लें कैसी पैदा होती हैं। तो हज़रत मरियम के सच्चा होने की बात। दूसरा किरदार है सच्चाई के नाम पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सूरत मरियम 41, वस्कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबीया। जिक्र कीजिए किताब में इब्राहीम का, यकीनन वो सच्चे नबी थे। और तीसरा किरदार है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, सूरत मरियम 54-55, वस्कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिकल वादी वकान रसूलन नबिया वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का वकान इंदा रब्बिही मर्दिया। और इस किताब में इस्माईल का ज़िक्र करो, यकीनन वो अपने वादे का सच्चा और रसूल और नबी था اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے. چوتھا کردار ہے ادریس علیہ السلام کا, سورت مریم 56-57, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو, یقیناً وہ سچا نبی تھا اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا. سب سے بڑا سچا انسان کون تھا؟ ایک دو نے نہیں, کتنوں نے کہا, نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے تھے. صادق اور امین کا لقب نبی کو ملا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آیت اتری کہ وانزی رشیرتک الاقربین, کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, تو اللہ کے نبی صفحہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور پکارنے لگے, ان کے نام لے لے کے, اے بنی فہر, اے بنی عدی, اے قریش. فرمایا سب آ گئے اس آواز پہ. جو خود نہ آ سکا تو اس نے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیا کہ جا کر سن کے آؤ بات کیا ہے, بڑی بات ہوگی. اور ابو لہب بھی قریش کے لوگوں میں اسی مجمع میں تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج ہے دشمن کی جو تم پہ حملہ کرے گی, تو میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں, کیونکہ ہم نے آپ کو سچا پایا. پھر آپ نے کہا میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو آنے والا ہے. اس پر ابو لہب نے وہ غلط باتیں کی جس پر پھر سورت لہب نازل ہوئی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 57704. تو پھر امت کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک جملہ لکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع نہیں کی جب تک آپ کو لوگوں سے صادق اور امین کا لقب نہ مل گیا. آج امت چاہتی ہے کہ مبلغ بنے, تو سب سے پہلے اس امت کو بھی یہی لقب لینا پڑے گا, صادق اور امین کا. کیا آج ہم ایک صادق امت ہیں, امین ہیں؟ اللہ ہمیں ایسا بنا دے. اگلا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے سچے لوگ آ جائیں تو ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جواب, ان کا ساتھ دیجئے. جس بات کو سچ سمجھتے ہیں نا, حق سمجھتے ہیں, پھر اس پہ جم جائیے, ورنہ یاد رکھیے جواب دہی ہوگی قیامت کے دن. دلیل کیا ہے؟ سورۃ توبہ 119, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سچ کیوں بولے, ملے گا کیا, سچائی کا بدلہ کیا ہے؟ تو نمبر ایک, سچا انسان عذاب سے نجات پائے گا. سورۃ زمر 33-35, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جو شخص سچائی لے کر آیا اور اس نے اس کو سچا مانا, یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ ان کو ملے گا, یعنی جو یہ چاہیں گے ان کو ملے گا. یہ ہے نیکی کرنے والوں کا بدلہ. تو کیا پتہ چلا کہ سچائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف زبان سے سچ بولا جاتا ہے یا کسی اور سے بھی؟ تو نوٹ کیجئے, صحیح مسلم 49:29, حضرت انس کی روایت, جس شخص نے صدق دل سے شہادت طلب کی اسے شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے اگرچہ وہ شہید بھی نہ ہو. دل بھی سچا ہوتا ہے. اللہ من ات اللہ بقلب سلیم, مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس سچا دل لے کر. سچا دل کون سا ہوتا ہے؟ اسی سیریز کا ایک لیکچر ہے, جا کے سن لیجئے, قلب سلیم, میرے حال میری لینڈ میں ہوا تھا. کیا پتہ چلا کہ دل کے بھی سچے رہے. اور سچ کی کیا صورتیں؟ نمبر ایک, سچا تاجر بنیے. ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کچھ لوگ آپ کے ساتھ گئے اور عیدگاہ کی طرف گئے, تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ چیزیں بیچ خرید رہے ہیں. آپ نے وہاں خطاب کیا, اے تاجروں کے گروہ. لوگ سارے آپ کی بات سن کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے, سر بھی اوپر کیے گردنے, یعنی متوجہ ہوئے. تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ گناہ گار اٹھائے جائیں گے, مگر جو اللہ سے ڈرا, یعنی اللہ کے خوف سے مال میں خیانت نہ کی اور نیکی کی اور لوگوں سے خرید و فروخت میں خوش معاملگی کی اور سچ بولا. یہ ترمذی کی روایت ہے 1210. क्या पता चला कि इंसान को हर मुमकिन सच्चा होना चाहिए। कुरान पाक में एक किरदार है, क्या? तीन लोगों का, जिन्होंने सच बोला और दुनिया में अच्छी खासी सजा भुगती, लेकिन आखिरत उनकी अच्छी होगी। नाम याद है? तबूक के सफर में पीछे रह गए काब बिन मालिक, हलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी। ये तीन लोग थे दुनिया में तकलीफ सहली। इनके रिश्तेदारों और इनके दोस्तों ने इनको क्या समझा था उस वक़्त? बेवकूफ। लेकिन क्या वो बेवकूफ थे? वो बेवकूफ नहीं थे। याद रखिए, दुनिया का 4 दिन का इंसान को मामला सख्ती का मिल भी जाए, आखिरत अच्छी हो जाए, सच बोलिए। अमूमन लोग सच क्यों नहीं बोलते? क्वेश्चन एक, डर लेते हैं लोगों से, सजा का डर होता है, मरूब हो जाते हैं। सच बोलने की वजह से पकड़े जाने का खतरा होता है, सच बोलने से कभी कभी बेइज्जती होने का डर होता है, सच बोलने की वजह से कभी कभी ताल्लुकात बिगड़ने का खतरा होता है, बिगाड़ आता है। इसी तरह सच बोलने से कोई नफ़ा हाथ से छीनता है। सारी नफ़े और नुकसान की लिस्ट बना लें, फिर एंड पे पूछिए, सब कुछ मिल जाए दुनिया में या सब कुछ छूट जाए, आखिरत में महरूम होगे तो क्या बनेगा? सच बोलिए। और ये वो पहली नेमत है जो अल्लाह के नबी ने यानी अपनी ज़िंदगी से लोगों को करके दिखाई। आप देखिए कि इसको जब तक हम झूठ को नहीं समझेंगे, बल्कि आप जो बातें पढ़ें इनके सब के ऑपोजिट नेगेटिव में आएंगे ना, तो आप इसको इंशाल्लाह ज़्यादा समझेंगे। झूठ को समझे बगैर सच समझ नहीं आ सकता। लेकिन एक दो छोटी सी बातें कि आज के दौर में सच की सबसे अच्छी आसान मिसाल क्या होगी? आप लोग प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें बोलें मेरे साथ कि सच की क्या किस्में होंगी। मतलब आज हम सच कहाँ बोलें, कैसे बोलें? बेचने में। और ये बता दें टेस्ट में क्या आएगा, असाइनमेंट में क्या आएगा? सच ही बोलना है ना। रेसिपी सही बताएं और सच हो, फिर झगड़ा हो जाएगा, शौहर नाराज़ हो जाएंगे। देखिए, अपनी इसलाह कर लें। सिंपलेस्ट वे टू बी ट्रूथफुल, अंदर की इसलाह कर लें। ये जो हमारे लूप होल्स होते हैं ना, हम ये नहीं चाहते दूसरों को पता चले। सच कुआंच नहीं है, ये बचपन से आपने जुमला सुना होगा, सच कुआंच नहीं है। सच्चे होते जाएं, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इतना सच लाएगा, आपको वो झूठ की बू से जो फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है उसकी कराहत महसूस होगी। तो जितने आप अच्छे होते जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से झूठ नहीं रहेगा। और इसको इंशाल्लाह झूठ के साथ जोड़ूंगी, कुछ चीज़ें हम आगे जाकर भी इसको लेकर आएंगे। अगली चीज़, चलिए, सादिक के बाद आपको क्या कहा गया? अमीन। तो क्या है? अमानत। आपको मुझे अमानत की अदायगी करनी है। अमानत क्या होती है, ज़रा से इसका रूट बोलें सब मिलकर। क्या है इससे और लफ्ज़ ज़रा बोलेंगे? अमीन, अमन, ईमान, मोमिन। बस अमानत जो है ना, असल में ट्रस्ट वर्थी होना है। आप अगर साहिब अमानत नहीं हैं तो बाकी चीज़ें तो कोई आपकी ज़िंदगी में ला ही नहीं सकता। आप देखिए कि अपनी अमानतों की हिफाजत करनी है। जिस शख्स के अंदर ईमानत नहीं है वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी ने मुनाफिक की जो 4 मारूफ चीज़ें बताई, उसमें से एक क्या है कि जब अमानत रखी जाए तो खयानत करें। आप कहते हैं इस कायनात में सबसे बड़ी अमानत कौन सी है? सूरत अलहज़ाब आखिरी आयत पढ़े आपने कभी, इसको गुजरे? इन्ना अरदना अमानता, कुछ याद आ रहा है? हमने इस अमानत को पहाड़ों पे पेश किया, लेकिन वो डर गए कि इसको थाम लें। और फिर आखिर में इस अमानत को किसने पकड़ लिया? इंसान ने पकड़ लिया। और ये अमानत थी इताअत की, मैं अल्लाह की बंदी बनूंगी। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या रब को रब नहीं मानना? यानी अमानत की अदायगी क्या है कि इस दुनिया में अल्लाह के बन के रहना है। जो अल्लाह कहेगा वो करूँगी, जिससे अल्लाह रोकेगा उससे रुकूंगी। और अमानतों को अदा करने का हुक्म अल्लाह ने कैसे दिया? सूरत निसा 58, इन अल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें इसके अहल के सुपुर्द कर दो। मेरा सवाल है आपसे, यह आयत किसके बारे में नाजिल हुई थी? अभी इतना तेज से नहीं चलेगा, मैं पहले ही कहकर आपकी साइड ले लेती हूँ। उस्मान बिन मजून के लिए, काबे की चाबी के मामले में। अल्लाह के नबी ने कहा था कि एक दिन आएगा, और वो आया और चाबी फिर उनको पेश की गई। आज तक खाना काबा की चाबी उस्मान बिन मजून के ख़ानदान के पास है, सऊदी हुकूमत के पास नहीं है। जब उसको खोलना होता है, बड़े प्रोटोकॉल से उनके ख़ानदान के लोगों को बुलाया जाता है। आपने फरमाया जमानते अदा करने का दिन है। और सूरत अनफाल 27, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर्रसूल व तखूनू अमानातिकुम वअन्तुम तालमून। ए लोगों, जो ईमान लाए हो अल्लाह और उसके रसूल के साथ, खयानत ना करो और अपनी अमानतों में गद्दारी के मुर्तकिब ना हो, हालांकि तुम जानते हो। और अमानत जो अदा नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे? खाइन। और खाइन के लिए अल्लाह का क्या हुक्म है? सूरत अनफाल 58, इन अल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन। अल्लाह ताला खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। और अमानत ईमान के साथ कैसे जुड़ी हुई है? इब्ने हब्बान किताबुल ईमान 194, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। उसका ईमान ही नहीं है जिसमें अमानत नहीं है। वला दीन लिमन ला अहद लहू, और उसका दीन ही नहीं जिनका अहद नहीं है, यानी जिसके अंदर अमानत की पासदारी नहीं है उसका फिर ईमान ही नहीं है। और अबू दाऊद की रिवायत है 3535 किताबुल बुयू अबू हुरैरा से, अद्दिल अमानता इला मने तमनका वला तखुन मन खानका। बहुत बड़ी बात है। फरमाया जिसने तुम्हारे पास अमानत रखी है इसकी अमानत अदा करो, और जिसने तुमसे खयानत की है उसकी खयानत ना करो। यानी इवन कोई तुम्हारे साथ खयानत कर भी दे फिर भी नहीं करोगे। कई लोग क्या कहते हैं, इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया हम इनको नुकसान देंगे, ये हमारी कोई चीज़ ले गए हम इनकी उठा लेते हैं, इन्होंने पैसे नहीं दिए हम इनकी गाड़ी उठा लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। इंसान को कभी भी किसी अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इंसान का ट्रस्ट टूट जाता है। और बुखारी की रिवायत है 3118, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेशक कुछ लोग अल्लाह के माल में नाजायज़ तसरुफ करते हैं, बस इनके लिए क़यामत के दिन आ गए। ये फ़ी माल अल्लाह क्या है? ये एक तो अल्लाह ने दिया, ना हक खर्च करना। नोट करें इस बात को, आप खुद अपनी खयानत भी करते हैं। वो कब? इसराफ करके, ज़्यादा ख़र्चा करके, खाना ज़ाया करके, कपड़े ज़ाया करके। यानी अल्लाह ने जो आपको माल दिया उसको बेकार ज़ाया कर रहे हैं। आधा खाए आधा फेंका, कभी पहना नहीं उसको ज़ाया कर दिया। साल हर साल एक चीज़ लेके रखी 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 रखी, कभी उसको इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं आया, और देने को भी दिल ना करा। आप देखिए कि इस्लाम कितने गैर महसूस तरीके से हमारी तरजीहात नहीं बदल देता, कैसे हम चीज़ों और माल की मोहब्बत में चूर होते हैं। और आप देखिए कि दिल ना ना भरा हो तो चीज़ें ज़्यादा आने से भी दिल नहीं भरेगा, आपको और चाहिए होगा। तो जितनी ज़्यादा आपके पास चीज़ें ज़्यादा होंगी ना, उतना भूखे होंगे। लोग कहते हैं जो बच्चे बहुत खाते पीते हैं ना, वो ज़्यादा भूखे होते हैं, हर चीज़ पे उनकी राल टपकती है। और जिन बच्चों को बहुत समझदारी के साथ नपा तुला रख के पाला जाता है, वो दूसरे की चीज़ की तरफ नज़र भी नहीं डालते। फिर इसी तरह याद रखिए कि बातों में भी अमानत होती है, और वो क्या है? तिर्मिज़ी की रिवायत है 1959 जाबिर बिन अब्दुल्ला से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई शख्स तुमसे कोई बात कहे फिर वो इधर उधर देखे तो वो बात तुम्हारे पास अमानत है। यानी नहीं चाह रहा वो कि कोई और सुने या किसी और को पता चले, तो उसकी बात कभी दूसरे से मत कीजिए। इसी तरह मुस्लिम की रिवायत है 6270 हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र से, कहते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी ने मुझे अपने पीछे बिठाया और आहिस्ता से एक बात फरमाई जिसको मैं किसी से बयान न करूँगा। यानी बात आपने जो बताई, ये बता दिया कि बात बताई है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बात क्या थी। अब आपके मेरे लिए क्या काम है? अमानतों की ख्याल। चलिए चंद प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं। क्या हमारे पास अमानत लोग रखवाते हैं? एक तो यह है कि कहीं गए अपनी चीज़ें रख गए, घर की चाबियां दे गए, गाड़ी की चाबी दे गए, और किस चीज़ की अमानत रखेंगे? फीस माना, प्रैक्टिकल चीज़ें बताइए। आज हमारे पास कैसे अमानत है? कोई बात कह दी कि अभी आप किसी को ना बताइएगा, और अल मुस्तशारु मोतमिनुन, हदीस में आता है मशवरा देने या मांगने वाला भी अमानतदार होता है। किसी ने आपसे अपने दुख सुख के लिए कोई मशवरा कर लिया तो आप दूसरों को बता देंगे, नहीं बता सकते। आप कहते हैं कि यहाँ भी होगा डेफिनेटली, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे डॉक्टर्स को इजाज़त नहीं होती कि मरीज़ की प्रोफाइल किसी के सामने खोलें, मरीज़ को बल्कि कई बातें बता देंगे, दूसरे को नहीं बताएंगे। आप किसी दूसरे का नाम से फ़ोन करके उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो ये अच्छी बात है कि बुरी है? और कितना कॉन्फिडेंस है। फिर अक्सर आप देखिए कि वेबसाइट से आप कोई चीज़ डाउनलोड करें और आपसे वो आप कॉन्टैक्ट मांगे तो नीचे क्या जुमला लिखा होता है कि वी विल नॉट यूज़ दीज इंफॉर्मेशंस, और ये शेयर नहीं करेंगे किसी और पर्पस में। और क्या है अमानत की चीज़ें जी? ये जिम्मेदारियाँ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटी लिस्ट क्या है? मैं ये काम करूँगी, ये क्या है? ये सब अमानत है। जॉब आवर्स को पूरा करना अमानत है। जो पैसे लिए उसका रिटर्न दिया कि नहीं दिया अमानत है। किसी को कोई चीज़ दी और उसके रिटर्न में उसको वो चीज़ वैसी उसके लेवल की दी कि ना दी, यानी धोखा होगा तो अमानत नहीं होगी। फिर आप देखिए कि हमारे पास तो एक और भी अमानत है, वो कौन सी है? कुन तुम खैरा उम्मत नुखरिजत लिन्नास, आप और मैं उम्मत दावत भी हैं और उम्मत मधु भी हैं। ये इस्लाम मेरे आपके उस अमानत है, ये अमानत देनी थी दूसरों को, हम घर में रह गए, अपनी ज़िंदगी में इसको रख लिया, दूसरों को शेयर ना किया। फिर जैसा कि आपने कहा कि बच्चे अमानत हैं, बच्चों की अच्छी तरबियत ना करना अमानत में खयानत है, इससे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। फिर आप देखिए कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करते वक्त ये सोचा करें कि क्या मैंने इसको कमा हक का हो किया। चलना चलो चलाओ का काम, इट्स ओके, कुछ तो हो जाए, समथिंग इज़ बेटर देन नहीं नथिंग, ये चीज़ इसमें नहीं आएगी। आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर ले आए तो उसका किरदार कितना खूबसूरत होता है। फिर याद रखिए कि अमानत में खयानत निफाक की अलामत है। रिवायत पूछे, मैंने बोल दी है, हवाला लिख लें, बुखारी 34, इब्ने अमर से रिवायत है कि मुनाफिक की चार खसलतों में एक खसलत क्या है कि अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करे। और जो रिवायत आपको सूरत अल्लाह साहब की दी थी, बिल्कुल आखिरी आयतें सूरत की 72-73 हैं, इन नारत नलमानता के अल्फाज आते हैं, लफ्ज अमानत मौजूद है कि हमने अमानत को पेश किया था आसमानों ज़मीन में। फिर एक और चीज़ लिखिए कि अगर एक इंसान अल्लाह के यहाँ भी अमानतदार हो सकता है, यानी अल्लाह ने किसको अमानतदार कहा, चले ये सवाल है मेरा आपसे, अल्लाह के यहाँ कौन अमानतदार है? कुरान की दलील है, इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शी मकीन मुताइन थम अमीन। कौन है ये? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल, हज़रत जिब्राईल को यहाँ अमीन का लफ्ज़ कहा गया, रूहुल अमीन क्यों कहा? और रसूल भी अमीन होते हैं। कहाँ लिखा है? सूरत यूसुफ 54-57, गवाही दी थी उस औरत ने या उस बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा? फलम्मा कल्लमहु काला इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। और इस पे कितनी लंबी बात होती है तफसीर में। आज अगर हम मुसलमान यूसुफ की तरह मकीन और अमीन हो जाएं, यानी अगर हम वाकई वही खूबियां रखें जो स्किल सेट उनका था, तो गैर मुस्लिम बादशाह दावत दे रहा है कि आओ हमारे मुल्क के खजानों को तुम संभालो, आज के मुसलमानों को अपने मुल्क का वजीर खजाना बनाएगा? वो मुल्क भी डूब जाए, पता नहीं क्या कुछ हो जाए। तो याद रखिए कि जिन में खूबियाँ होती हैं लोग उनको खुद ही ऑफर करते हैं। फिर इसी तरह याद रखिए कद अफलहल मोमिनून, उसमें क्या आता है जी? कौन? आगे पढ़ते जाए, मैं आपसे पढ़वाना चाह रही हूँ असल में। वल्लजी नहुम लियमानातिहिम वाहदिहिम राउन, सूरत अल मोमिनून शुरू की आयतें, उसमें से 8 नंबर आयत इस बारे में है। तो अमानत वाले ही अमानत का हक अदा करते हैं। अच्छा, आप अपने बच्चों को कैसे इस बारे में कायल करें, कैसे उनको सिखाएं अमानतों की खयानत से बचने के लिए? तो आप देखिए कि बच्चों का होमवर्क अमानत है, कॉपियां पेंसिल अमानत है। किसी की चीज़ ला सकते हैं घर में? कोई ऐसी चीज़ जो मना की गई थी किसी से शेयर नहीं करनी, उसको शेयर कर देना अमानत में खयानत है? बाज़ दफ़ा कुछ लिंक्स दे दिए जाते हैं तरबियत के लिए। अब आज के दौर में ये भी ज़ुबान एक बोलनी पड़ती है कि जी ये आपकी ट्रेनिंग के लिए है, ये आप आगे शेयर नहीं करते, ये असाइनमेंट आप आगे शेयर नहीं करेंगे। ये नहीं, एक सिस्टम चलाना है, वरना फ़र्क क्या पड़ता है? फिर वो चीज़ बाहर आम हो जाएगी तो फिर दूसरों तक उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी ना। कई लोग ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी जगह डिफरेंट, मतलब जो भी एडमिन्स हैं, हर मुल्क के एडमिन्स के साथ एक एक ग्रुप बना हुआ है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं सिर्फ उनकी तरबियत के लिए एक ही दूसरी जगह भेजती हूँ, और यकीन की हद तक यकीन है कि उसको किसी दूसरे के साथ कोई शेयर भी नहीं करता होगा। अगर मुझे किसी अपने एडमिन पे 19-20 का भी शक पड़ जाए, मैं कभी भी उसको नहीं दूंगी। वजह क्या है कि ये अमानतें होती हैं, तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सिखाने के लिए। आप दूसरों को कई चीज़ें देते हैं, ऑडियोज़ देंगे, विजुअल देंगे, क्या कुछ, तो इनकी हिफाजत करनी चाहिए। आपको कहा जाता है टेस्ट आपने दे दिया, आप किसी दूसरे से शेयर नहीं करेंगे। हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या सिलसिला इधर, लेकिन कोई आके बाद में टेस्ट दे तो आप उसको पहले पेपर बता चुके हैं। तो हमेशा याद रखिए, मोमिन बड़ा गहरा होता है। डाल ही जाओ, डाल ही जाओ, आपने बात की डाल दो, आपने की सबकी बातें सुनता है, बोलता कम है। जितना ज़्यादा अपने अंदर रखेंगे ना, उतना अल्लाह के हुक्म से आपके अंदर फिर हिकमत भी आएगी और अल्लाह का खौफ आएगा। एक और भी अमानतदार होता है, शायद आपने कभी उसके बारे में ना सुना हो, और वो है मुअज्जिन। मुअज्जिन अजान देने वाले। हदीस सुन लीजिए, तिर्मिज़ी की रिवायत है 207, अबू हुरैरा रावी हैं। आपने फरमाया, इमाम ज़ामिन है और मुअज्जिन अमानत रखने वाला है। या अल्लाह हिदायत दे इमामों को और बख्श दे मुअज्जिनों को। ये कैसे अमानतदार है, कोई आप में से बताएगा? टाइम पे खुद लेट हो रहे हैं, अपनी देरी की वजह से दूसरों को भी देर से पढ़वा दें, या खुद पहुंच ही नहीं सकते और वक्त आ चुका है, लेकिन इसलिए लेट करें कि भाई मेरे लिए आसान होगा। फिर इसी तरह से अल्लाह के साथ साथ रसूल के साथ भी खयानत नहीं करनी चाहिए। सूरत अनफाल 27:28, ला तखूनुल्लाह व रसूल व तखूनु अमानातिकुम। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बा अमानत बनाए, अपनी हर चीज़ को रखें। औरत की इज्जत अमानत है। बीवी अपने शौहर के घर में रहकर उसकी इज्जत होती है। आपने फरमाया, बदतरीन औरत है वो जो किसी और ख़ानदान में कोई और बच्चे को ले आए। लोग सोचते रहे कि शौहर का बच्चा है, लेकिन वो कोई गलत ताल्लुक की वजह हो। आप सोच सकते हैं कि कितना खूबसूरत है हमारा दीन, कितनी छोटी छोटी बातें सामने आ जाती हैं। और मैं अक्सर सोचती हूँ, हमारी तो ऑलमोस्ट हर चीज़ बाहर जाती है ना, लाइफ जारी होती है। अगर दिल में ज़रा सा शक पड़ जाए ना, हाँ ये बातें कोई ना सुने, लोग क्या सोचेंगे, तो कभी भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग ना हो। इतना यकीन है इस बात पे, एक तो अल्लाह का कलाम सच्चा, नबी की बात सच्ची, है ही कोई ऐसी बात नहीं कि जो किसी के खिलाफ हो, राइट? और दूसरी बात है कि जो बात की जा रही है उसमें कोई हैंकी पैंकी है ही नहीं है। तो पूरे यकीन के साथ बात करें और अपने ऊपर भी लें। आप अपने ऊपर सवाल कीजिए, क्या मैं अमानत का हक अदा करती हूँ? आप अपने ऊपर खुद अपने नंबर दें, ग्रेडिंग कीजिए। जो जिम्मेदारी दी जाती है, जितनी दी जाती करती हूँ। जब मैं कहती हूँ मैं मजबूर हूँ, तो वाकई मैं मजबूर होती हूँ? जब मैं कहती हूँ ये नहीं हो सका, तो वाकई वो वजह होती है? देखिए, एक माजरत के साथ बात कहना चाहूँगी, और वो क्या है कि बाज़ लोग अपनी सारी कमी बेशियाँ दूसरे के सर लगा देंगे। मसलन मिसाल दूंगी, घर में छोटा बच्चा है, अपनी हर कमी बेशी बच्चे के नाम, बिलीव मी, बात समझ रहे? बच्चा वो चाहे ना ही रोया हो, बच्चे की माँ है इसलिए फिर ये तो नहीं हुआ होगा ना। घर में कई दफ़ा हाल होता है कि टूटता ग्लास किसी से है और आवाज़ देते हैं, ये क्या किया है, इसलिए कि सास को पता चले मैंने नहीं तोड़ा, बच्चे ने तोड़ा है। देखिए ये बोलेंगे कल। अच्छा, हम एक और किसके नाम पे लगाते हैं? शोहरों पे, ससुराल पे। देखिए ये भी खयानत है। आपका बच्चे ने आपको नहीं सताया, आप खुद ही नहीं उठे, कोई बात नहीं, इस ओके कह दीजिए, आप घर से ही लेट निकले और इल्ज़ाम अब किसी ट्रैफिक बहुत थी। अच्छा कितनी ट्रैफिक थी, कितनी देर रुके? 2 मिनट। और निकले लेट कब थे? ये नहीं कोई बताता। मानते क्या है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले, हम दूसरों पे लगा देते हैं। इसने नहीं करने दिया, वो नहीं हुआ, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया। यकीन करें बहुत बहादुर हैं वो लोग जो अपनी कमी बेशियों का अपने सर लें। यस आई हैव डन दिस। अच्छा कुछ लोग ऐसे, मैं उनसे बहुत मुतासिर होती हूँ। एक बच्ची है मेरे इर्द गिर्द हमारे अपनों ही में, तो वो अपनी हर खराबी यानी जो भी गलत काम ना अपने ऊपर ढक से लेती है। जैसे हम कहीं स्कूल में ही थे अभी, तो वो कहीं गई, एकदम उनका फोन आया, तो बजाय इसके उन्होंने ये कहने के कि एक्सीडेंट हो गया या मेरी गाड़ी को किसी ने लगा दी कुछ भी, मुझे आज भी उनका वो जुमला याद है, लगे कई साल हो गए हैं, सलाम अलैकुम, मैंने गाड़ी किसी को मार दी है। तो मुझे उस वक्त इतनी खुशी हुई कि ये अपनी जिम्मेदारी खुद ले रही है। अमूमन ऐसे मौक़ों पे बंदा डर जाता है, मेरी गाड़ी को किसी ने मार दिया या मैंने मार दी, फ़र्क है ना दोनों। ये जो आप इंश्योरेंस की ज़ुबान में लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, किसने किसको किसको मारा, मानते हैं। आप ले लीजिए पैसे दूसरों से, आपको नहीं पता आगे क्या होगा, किसके साथ होगा। तो हमेशा अपना दामन पाक रखें इन सारी चीज़ों से। तो दिल करता है बंदा सब को छोड़ छाड़ कर एक कोने में बैठ जाए, पर बैठ नहीं सकते। इंसानों की दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ने आपको मुझे पैदा किया है, तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आप को रखें।